एक और बड़ी खूबसूरत हदीस है इस बारे में, सही मुस्लिम की रिवायत 1772 है। अबू हुरैरा इसके रावी हैं। आपने फरमाया, हमारा परवरदिगार जो बड़ी बरकतों और बुलंद जात वाला है, आखिर तिहाई रात में, आखिर के लफ्ज़ को गौर कीजिएगा, जब रात का आखिरी तिहाई होता है तो आसमाने दुनिया पर उतरता है और फरमाता है, कोई मुझसे दुआ करने वाला? कौन है जो मुझसे दुआ करे, मैं इसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे, मैं इसको दूं? कोई है जो मुझसे बख्शिश चाहे, मैं इसे बख्श दूं? भला जवाब क्या आता होगा? खामोशी, खर्राटे। अभी तो थक के सोए थे, अभी तो आंख लगी थी। क्या हमारी रातें ऐसी तो नहीं है? रात के आखिरी हिस्से में लाखिर आकर पुकारें दे, आ जाओ रात का आखिरी हिस्सा, उठ जाओ। और हम सो रहे हैं तो सो रहे हैं। जरा सा सोचिए, आपको अगर इस आखिरी वक्त में कोई बेल करे, फोन करे, क्या हाल होगा आपका? घबराहट? खैरियत है? सब ठीक है? अब्बा जी ठीक है? अम्मा ठीक है? मिड नाइट की फोन कॉल भी बड़ी खतरनाक है। अब तो खैर सारा कुछ फ्री हो गया ना, जब मर्जी करो टुन टुन, किसी को क्या लगे। लेकिन एक वक्त था बड़ी घबराहट होती थी रात की कॉल पे। चलिए जरा सा तसव्वुर में लाइए इस बात को, रात की आखिरी तहाई में मैं क्या करती हूँ? दो बातें सुना देती हूँ, एक सहाबा की और एक आज के दौर के किसी नेक इंसान की सुनाई हुई बात। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के बड़े चहीते थे और आपकी ज़ुबान पे अक्सर ही आपका जिक्र खैर होता था। सहाबा को इस पे बड़ा रश्क आता था, कहते थे कि अल्लाह के नबी हज़रत अबू हुरैरा से इतने करीब क्यों हैं, क्लोज क्यों हैं, या आप उनसे खुश बहुत हैं? और याद रखिए, इल्मी शख्सियात इल्म के इतने हरीस के बाहर ना जाएं और वहीं बैठे रहें और बेहोश हो जाएं और लोग सोचें कि इनको मिर्गी का दौरा पड़ा है। और असल बात यह है कि अबू हुरैरा उठ के जाना नहीं चाहते कि अल्लाह के नबी की ज़ुबान से निकला हुआ कोई मोती मैं ना चुन सकूं। ये कैसे होता है? सबको पता है अबू हुरैरा साहिब इल्म शख्स थे, तो अल्लाह के नबी ऐसे शख्स से मोहब्बत करते थे कि जो इतनी डेडिकेशन के साथ काम करता है। एक सहाबी को एक दिन ख्याल आया कि मैं ज़रा जा कर तो देखूँ कि आखिर अबू हुरैरा में खूबी क्या है। घर आए, उनके कहा कि मैंने किसी बात पे कसम खा ली है, 3 दिन तक घर नहीं जाऊंगा, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे, मैं आपके घर 3 रातें रह लूं? देखिए उस दौर में कितना इजी गोइंग कल्चर था। अबू हुरैरा ने कहा, ज़रूर ज़रूर, क्योंकि हदीस है कि मुसलमान अगर दूसरे मुसलमान कोई कसम खा चुका है, उसका भाई या कोई, तो उसकी मदद करे। कहा, जी शौक से रहिए, बिल्कुल रहिए। ये नहीं कहा, नहीं देख लो, अभी तो घर में खाना नहीं, ग्रोसरी नहीं, अभी तो सफाई करनी, अच्छा फिर आपको मैं होटल बुक करा दूँ? ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, इतना प्रोटोकॉल नहीं होता मुस्लिम्स में। खैर बिस्मिल्लाह किया, रहने लग गए। 3 दिन तक वो सहाबी अबू हुरैरा के घर में रहे। वापस गए तो उन्होंने खबर दी। आप मैं सोचते हैं, अच्छा किसी के घर गए तो क्या वहाँ के अंदर की कोई खबर है, इनकी बेटी आई हुई है, छुपी है, मत पूछो, मियाँ भी बड़ा लड़ते हैं, बड़े ये हैं वो, ना ना ना। कहते हैं कि मैंने अबू हुरैरा के घर में रातें जो बसर की, मैंने अबू हुरैरा का ये मामूल देखा कि रात का पहला पहर है तो खुद तहज्जुद की नीयत से खड़े हो जाते हैं और उसमें कुरान पढ़ते हैं। जब खुद सोने का इरादा करते हैं तो जौजा को उठा देते हैं। और याद रखिए, अबू हुरैरा ने शादी अल्लाह के नबी के बाद की थी। कहते थे, मैं घर गृहस्थी में नहीं पढ़ के अपना इल्म का वक्त ज़ाया करना चाहता, ये उनका अमल था। खैर सेकंड, जैसे कह सकते हैं कि बीच का जो हिस्सा रात का, 3 हिस्से करें तो उसमें से दूसरा, आपकी जौजा हैं और वो कुरान पढ़ती हैं तहज्जुद में, और फिर जब वो सोने लगती हैं तो घर में ही गुलाम है, उसको उठा दिया जाता है और वो फिर आखिरी पहर में तहज्जुद में कुरान पढ़ता है। क्यों? ज़रा सा सोचिए, सबसे बेन्याज हो, रिलैक्स्ड। वजह क्या थी कि घर हो अबू हुरैरा का और रात के किसी हिस्से में उधर से अल्लाह के कलाम की आवाज़ें ना आए? ये नहीं हो सकता। बरकतों को बुलाने वाला, रहमतों को खींच के लाने वाला कलाम अगर आज हमारे घरों में होगा तो बरकतें आज भी आएंगी। चलिए रिलेट कीजिए अपने घर को अबू हुरैरा के घर से, क्या आज हमारी भी रात के कहीं 3 ही हिस्से तो नहीं? पहला सबके साथ, दूसरा दोस्तों में, और तीसरा सिर्फ बंद कमरे में, ये देखना और ये देखना। अल्लाह हमारी इसलाह फरमा दे। याद रखिए, रात की तन्हाइयों में शौहर बीवी भी छुपकर अगर कोई बेहूदगी देखेंगे तो उनके लिए भी उतना ही गुनाह है जितना दूसरों के लिए। क्या मैं आखिरी पहर में उठती हूँ? और यह आखिर के साथ दुआ का बड़ा ताल्लुक है, लेकिन मैं आपको जाके आगे देना चाहती हूँ जब हम दूसरे नाम करेंगे जो बराह रास्त दुआओं से जुड़ते हैं। लेकिन चलिए आज अल आखिर के नाम के साथ नियत कीजिए, आखिरी रात का हिस्सा उठा करूंगी। ए मालिक, हमें उठा भी दे, फिर इबादत की भी तौफीक दे, फिर दुआओं की भी तौफीक दे। अपने काम उस वक्त किया करें। आप अपना होमवर्क कीजिए, आप उस वक्त अपने असाइनमेंट्स कीजिए, आप अपना तर्जुमा याद कीजिए। आपको अल्लाह ने जो जो जिम्मेदारियाँ दी हुई हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, एडमिन्स हैं, और ऑफकोर्स हमारे गेस्ट हैं, जो भी, आप कोई भी काम कर लीजिए। जिसमें आपको नींद नहीं आती वो काम आखिरी हिस्से में कीजिए, लेकिन दुआ करिए। आइए नियत करते हैं कि हमने रात का कुछ हिस्सा तो ज़रूर अल आखिर को पुकारना है कि ए मालिक तू भी मुझे पुकारा, मैं आ गई। फिर हम रोने रोते हैं बीमारियों के, परेशानियों के, दुखों के। दूसरी भी मैंने आपसे कही थी एक बात, तो वो भी सुना देती हूँ। तौफीक चौधरी साहब एक स्पीकर हैं, उस्तादों में से एक उस्ताद है, अल कौसर अकेडमी है और ऑस्ट्रेलिया से उनका ताल्लुक है। तो उनकी सुनाई भी एक बात, तवील कहानी में से खुलासा ये है कि ये कुछ अरसा सऊदी अरब गए पढ़ने के लिए। तो जब ये वहाँ पढ़ने के लिए गए तो इनके उस्ताद थे, बड़ा कुर्ब था। कहते हैं एक रात मैं सोया हुआ था, बिल्कुल आखिरी पहर था रात का जब, तो मैं गहरी नहीं, तो मेरे फ़ोन की बेल बजी, एक बेल, दो बेल, और वो ये एक मोटा सा फ़ोन जो पहले कभी होता था। कहते मैं घबरा गया, मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया, आवाज़ मेरी नींद से भरी हुई है, तो मैं कह रहा हूँ कि हेलो कौन कौन, घबरा भी गया। और कहते उधर देखा तो उस्ताद थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा नाम नहीं लिया, बस अगर उनका नाम ही सईद बिन फुलां फुलां था तो कहने के सईद बोल रहा हूँ। इनको समझ ना आई, इन्होंने कहा कौन, ये क्या वक्त है, कौन है आप। थोड़ी सी बात हुई तो उस्ताद ने कहा कि तुम तौफीक बोल रहे हो, क्या कर रहे थे इस वक्त तुम। बस हो रहा था, उन्होंने गुस्से में फ़ोन बंद किया, बात ना की। अब तो इनकी सारे तबक भी खुल गए, आंख क्या, नींद क्या खुली, वो हवास खुल गए कि उस्ताद ने क्या कह दिया आधी रात को उठकर। हम होते कहते लो इतना अनकल्चर्ड, आधी रात को बुलाएं, किसी को फ़ोन करें, याद कर, तोबा तोबा। कहते अगले दिन मैं यूनिवर्सिटी गया तो मेरे उस्ताद मेरे से बात ही नहीं करे, मैं जान के उनके सामने आ रहा हूँ तो नज़रें फेरे, हाथ बढ़ा रहा हूँ तो इधर से उधर। एक आध दिन उन्होंने खूब अपनी नाराज़गी दिखाई, मैंने कहा मुझे माफ़ कर दे। देखिए हम होते ना तो उस्ताद माफ़ियाँ मांग रहे होते, सॉरी एक्सक्यूज़ मी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया, कैन आई टॉक टू यू, कैन आई हैव अ टाइम प्लीज़ दिस दे। आज तो हम पीछे पड़े क्या, वो उनका मामला था। तो उन्होंने कहा कि कुरान वाला, रात की इस घड़ी में या तो कुरान पढ़ रहा होता है या नफिल पढ़ रहा होता है, तू किस हो रहा था। कहते हैं वो दिन और आज का दिन, मैं अपने उस्ताद की ये बात पल्ले से बांध चुका हूँ। आज मैं और आप अपना जायज़ा लें, हमारे तो शबो रोज उलट गए, छुट्टियों ने तो और ही मत मार दी। लॉकडाउन में सब घर में, सारा दिन पार्टियां दापते हैं, और रात को थक हार के जब बिस्तर पे जाते हैं तो क्या नींद। आजकल तो शुक्र करें रातें बड़ी लंबी हैं, सो सो के भी ना बंदा फिर भी उठ जाए इतनी लंबी रात, लेकिन हमारे चूंकि मामूलात ठीक नहीं है तो हमारी रातें वीरान हैं। नियत करते हैं, दुआ भी करते हैं कि अल्लाह आसान कर दे, अल्लाह तो सबसे ज्यादा मेरे लिए इसको आसान कर दे। और वो जो वक्त है, वो जो खूबसूरती है, ये तो आज रात कहिएगा अल आखिर, मैं आखिरी हिस्से में उठ गई रात के, फिर देखिएगा आपको लज्जत मिलेगी। इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह ताला के इस नाम अल आखिर के बारे में असलाफ में से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का वो कौल, एक दहरिये ने कहा कि अल्लाह से पहले कौन था, और तुम कहते हो कि अल्लाह अर्श पर है, तो इस वक्त वो किस रुख पर बैठा है। तो आपने फरमाया बता एक से पहले क्या है, और ये जो चिराग जल रहा है इसकी रोशनी किस रुख पर है, जब इसका जवाब नहीं तो उसका क्या जवाब होगा। तो इसी तरह याद रखिए अल आखिर के बाद कौन है, कोई भी नहीं है। देखते हैं अल आखिर से मुतल्लिक कुछ दुआएं और अज़कार। हालांकि हदीस में भी हमने एक दुआ सीख ली है अल्हम्दुलिल्लाह, अब दुआओं पे थोड़ी सी बात करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदों में ये दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मग़फिरली ज़म्बी कुल्लहू दिक्कहू व जिल्लहू व अव्वलहू व आखिरहू व अलानियतहू व सिर्रहू। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 1084। और आपको बता दूं कि हमने नमाज नबी में सजदों की दुआओं में से ये दुआ की थी, नमाज के सजदे में जो दुआएं की जाती हैं उनमें से ये एक दुआ है। ज़रा इसके ऊपर गौर कीजिए, ए अल्लाह मेरे तमाम गुनाह माफ़ फरमा दे, छोटे बड़े, अव्वल और आखिर, जाहरी और पोशीदा। गम लगा हुआ है गुनाहों का, कभी दिल पे बोझ हो ना कोई गुनाह अपना जो सतार है, जुबान का, आँख का, कान का, तो ये दुआ पढ़ा करें सजदे में, ये दुआ मांगिए अल्लाहुम्मग़फिरली ज़म्बी कुल्लहू, अल्लाह मेरे सारे ही गुनाह माफ़ कर दे, दिक्कहू व जिल्लहू, छोटे हैं या बड़े, अव्वलहु आखिरहु, पहली ज़िंदगी के बचपन के कॉलेज लाइफ के दोस्तों सहेलियों के साथ किए हुए, या इब्तदाई ज़िंदगी में ससुराल से कोई मामले हो गए, या फिर आखिरी ज़िंदगी के, और आखिरी एलानियों या सिर्रों, अपनी दुआओं में ये दुआएं शामिल कीजिए। इसी तरह तशहुद की दुआ में, आप आखिरी तशहुद जो होता था जिसमें सलाम फेरी जाती है, तो आप उधर क्या दुआ करते थे, ये भी मुस्लिम की रिवायत है 1812, अल्लाहुम्मा अग़फिरली मा कद्दमतु व मा अख़्खरतु व मा असरर्तु व मा अलनतु व मा असरफ्तु व मा अंता अलमु बिही मिन्नी अंतल मुकद्दिमु व अंतल मुअख़्खिर। ये नोट कीजिए लफ्ज़, ला इलाहा इल्ला अंता, दो दफ़ा लफ्ज़ है, व मा अख़्खरतु और अंतल मुअख़्खिर। ए अल्लाह, मेरे इन गुनाहों की मग़फ़रत फरमा, जो मैंने पहले किए और जो मैंने बाद में किए, और जो मैंने छुप कर किए और जो मैंने जाहिर किए, और जो मैंने ज्यादती की, और जिनको तू मुझसे ज्यादा जानता है, तू ही आगे करने वाला है और तू ही पीछे करने वाला है, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ऐसे लगता है कि बंदे मोमिन को धड़का लगा रहता है, अल्लाह मेरी बख्शिश हो जाएगी, अल्लाह जो गुना, हाय वो पिछला गुना, हाय वो शादी के मौके का गुना, हाय वो वीकेंड पे गुना, हाय वो किसी इंसान के मामले का गुना, तो तड़प तड़प के, लिपट लिपट के अल्लाह से अपने गुनाहों की माफियों की दुआएं करता है। तो आप कहा करें, या अल आखिर, या आखिर, तो सबसे आखिर है ना, तो अल्लाह तो मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाह जी मेरे आखिरी गुनाह जो मुझसे हो गया, अब मेरे से कोई गुनाह ना हो। फिर आप देखते हैं कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार में हमारे जो गुनाह होते हैं ना, वो मुख्तलिफ तरह के होते हैं, वक्त के साथ गुनाहों की नौीयत बदल जाती है। बदनाम हम यूथ को करते हैं, यंग एज को, क्योंकि उनके गुनाह अपेरेंट होते हैं, जाहरी होते हैं, मोस्टली रेबेलियस होते हैं, ओपन होते हैं, ब्लंट होते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर आप देखिए, तो बुढ़ापे की तरफ जाते जाते गुनाह जो हैं वो फिर दिल के गुनाह बनने लगते हैं। हसद, कीने, बुग़्ज़, रकाबतें, नफ़रतें, वो ऐसा, वो फलां, ब्लैक पोलिंग, और न जाने क्या क्या गंदगियां दिल में भर के जाते हैं अल्लाह को मिलने। दुआ कीजिए कि अल्लाह तेरे पास आने से पहले मेरे दिल में हर खराबी, हर गंदगी निकल चुकी हो, कोई गुनाह का धब्बा भी तेरे पास न लेकर आऊँ। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जब आप अल्लाह ताला के इस नाम अल आखिर को जानते हैं, तो आपके ऊपर इसका क्या असर होना चाहिए। पहली बात तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही अल अव्वल है और वही आखिर है, तो आपको रात को सोते वक्त ये दुआ मांग कर सोना चाहिए। बरा बिन आज़िब की बहुत ही प्यारी रिवायत है, ये भी आप सोने जागने की दुआओं में कर चुके हैं, कि जिसमें उन्होंने नबी युका के लफ्ज़ को रसूल का से बदल दिया था। आपको याद आ जाएगी दुआ जब मैं भी बोलूँगी, तो आप सब ने पढ़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरा बिन आज़िब को एक दुआ सिखाई थी और उनसे कहा था कि जब बिस्तर पे जाओ तो ये दुआ मांग लिया करो। जब सुना दी, बता दी, फिर जब कहा कि अच्छा सुनाओ क्या मांगा या क्या दुआ की थी, तो उन्होंने उस दुआ को मांगने में सिर्फ लफ्ज़ नबी और रसूल को इंटरचेंज कर दिया। दुआ क्या है मैं आपके सामने रखती हूँ। अल्लाहुम्मा अस्लम तो नफ्सी इलैक व फव्वत तो अमरी इलैक व वज्जह तो वजही इलैक वल जा तु जहरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मलजा व ला मंजा मिनका इल्ला इलैक आमंतु बि किताबिक अल्लज़ी अनज़लता व नबीक अल्लज़ी अरसलता। ये आपके अल्फाज हैं, उन्होंने सुनाने में नबी जी का को रसूल का कह दिया था, तो आपने कहा नहीं वैसे ही मांगो। इसीलिए कहते हैं कि दुआएं जो आ गईं कुरान और सुन्नत में, उसके अल्फाज नहीं बदलने चाहिए। मतलब क्या, अब ज़रा सा आप ऐसे आंखें हल्की सी बंद करें और सोचें, क्या खुद सुपुर्दगी है इस दुआ में, क्या अल्लाह मैंने अपना नफ्स तेरे सुपुर्द कर दिया, कंप्लीट सबमिशन। जैसे बच्चा बड़ा ही मचलता है, बड़ा ही मचलता है, माँ की गोद में आता है, ऐसे चंद मिनट में सोता है कि जैसे सारे दिन का हारा हुआ मेहनत करने वाला अपने रब के आगे ऐसे झुका करें। बफवत तो अमरी इलैक, अल्लाह मैंने अपने सारे काम तेरे सुपुर्द कर दिए। अगर अभी तक ये दुआ आपकी दुआ में नहीं गई ना, तो अभी मेहनत की जरूरत है। बिस्तर पर लेटे, चलिए उस वक्त तुम्हारा शऊर जिंदा होता है। मैं आज आपको एक बड़ी छोटी सी एक्टिविटी देने लगी हूँ, किसी की हेल्प ले लीजिए जो आपके साथ ही होते हैं। जब सुबह उठती हूँ, और ऑफ कोर्स आप मिड नाइट में फजर के करीब उठती हैं, उस वक्त मेरी जुबान पे क्या होता है? आपको तो हर बंदे के मुंह में कुछ होता है, कोई बड़बड़ाता उठता है, कोई कुछ, और जिसके दिल में जो होता है ना वो वही बोलता है जी। उस वक्त क्या ये मेरे मुंह से निकलने लग गया कि अल्लाह मैंने अपने सारे मामले तेरे सपुर्द कर दिए, अल्लाह मेरा सारा मामला तू ले ले, अल्लाह मेरे सारे काम तेरे, मेरे सारे प्रोजेक्ट तेरे, मेरी सारी प्लानिंग तेरे हाथ में, अल्लाह जो चाहे करे, अल्लाह मेरा दुनिया का, दीन का, बच्चों का, घर का, बाहर का मामला तेरे हाथ में, वज्जह तो वजही लाइक, और मैंने अपनी पेशानी तेरे आगे डाल दी, कंप्लीट सबमिशन, तेरी दीवी तकदीर पे राजी हूँ, तेरे आगे झुक गई, ये माथा टिकेगा तो सिर्फ तेरे आगे, देखिएगा आप कैसे बेनियाज होते हैं, सारे गिले ही खत्म, फुलां ने नहीं पूछा, फुलां ने नहीं कहा, फुलां को हमारा ख्याल नहीं, छोड़ दीजिए ये शिकवे पुराने हो गए, उस हस्ती के साथ ताल्लुक जोड़े, वल जा तो जहरी इलाई, एला मेरी पुश्त, मेरी कमर, जहर कहते हैं बैक को, एला मेरी कमर लग गई तेरे सामने, रख बताऊँ वह रह बता नहीं लाइक, मतलब सजदे में गिर गई हूँ, मेरी कमर ऐसे बकरे की तरह झुक के तेरे आगे गिरी, और कभी उम्मीद है और कभी खौफ है तेरा, ला मल जा वला मन जमीन का इलाइक, ये है अल आखिर, अल आखिर अगर आपको बना नहीं देगा तो कोई नहीं देगा, आखिरी निजात और आखिरी बचाव उसी के पास है, आमन तू भी किताबी कल लजी अनजल ता, अल्लाह मैं तेरी उस किताब पे ईमान ले आई जो तूने नाजिल की, व नबी यु कल लजी अरसलता, और तेरे उस नबी पर जो तूने भेजा, यानी किताब और नबी दोनों का तसव्वुर इसमें दे दिया, तो गोया के रातों को बिस्तरों पे लेटे हुए आपने मालिक के साथ राजो नियाज किया करें। इसी तरह आपको पता है कि अल्लाह के नबी सुबह की दुआ में आप क्या कहा करते थे, अल्लाहुम्मा बिका सबखना व बिका अमसैना व बिका नहया व बिका नमूत व इलैका नुशूर, और जब रात को सोते थे तो इसको ऑपोजिट कहते थे, अल्लाहुम्मा बिका अमसैना व बिका सबखना व बिका नहया व बिका नमूतु व इलैकल मसीर। तो अल्लाह ताला के साथ दुआओं का ताल्लुक जितना जुड़ता जाएगा आपको उतना फ़ायदा होगा। फिर एक और इस नाम के साथ असर क्या है कि इस बात का यकीन कर लें कि अल्लाह के सिवा बाकी हर चीज़ फानी है, जैसे पैदा होने से पहले कोई ना था और हर चीज़ के फना होने के बाद भी कोई बाकी ना रहेगा, यकीन कीजिए इस बात का, कुल्लु मन अलैहा फान, फानी है, बंदे फानी, अल आखिर बाकी रहने वाला, ना था आज कुछ हैं कल कोई भी नहीं रहेंगे, इस यकीन के साथ जिएंगे तो आपका भी दिल इस दुनिया में ज्यादा नहीं लगेगा, आप कहेंगे कि मैं उसी हस्ती की तरफ अपने आप को क्यों ना करूं, देखिए जब हम मरेंगे ना तो लोग पकड़ पकड़ के हमें खींच खूंच के डाल देंगे कब्र में, तो दुनिया में अल्लाह को प्यारे हो जाए, आखिरत तो बाद की बात है, फिर इसी तरह अल्लाह तआला ने हमें अकेले ही पैदा किया है, अपनी तमाम इबादात और मामलात को उसके सपुर्द कर दें, सही तरीके से तौहीद पर चलने वाले बन जाए, वही बात है कि फिर आपको ज्यादा की जरूरत नहीं रहती, और इसी तरह से जब आप लफ्ज़ अल आखिर जान लेते हैं तो आपका दिल नरम होता है, आप उसमें से मौज़ए हसना लेते हैं, और वो क्या कि आप कुछ नियतें करते हैं, आप अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक जोड़ते हुए अपने आप को इस तरीके से बांध लेते हैं, मसलन आपको इस बात का यकीन आता है कि बाकी रहने वाला ही हमारी खुशियों को बाकी रख सकता है, इसलिए उसी पर उम्मीदें लगानी है, जरा सोचिए क्या हम चाहते हैं कि हमारी खुशियां बाकी रहें जी, तो क्या हम बाकी रहने वाले को और अल आखिर को खुश रख दें? हमारा हाल यह कि शादी के शुरू में एक मिलाद, फिर एक कुरान खानी, फिर एक छोटा सा दर्स और बड़ी सी दुआ, चलो जी अब रसूमात शुरू, उधर मेहंदी, उधर ढोलक पार्टी, उधर ये, उधर फंक्शन, ये सारी शादी कर करा के आखिर में कहते ठहरो ठहरो ठहरो, रुको रुको रुको, वो कुरान नहीं है किसी के पास, वो कहते फोन में रखा, कहते नहीं तोबा तोबा बुरी बात, जाओ मस्जिद से कुरान लेकर आओ, और भागता दौड़ता एक बच्चा मस्जिद में आता है, कहता है इमाम साहब एक कुरान थोड़ी देर के लिए ले लूँ, क्यों भाई क्या करोगे, वो दुल्हन को रुख्सत करना है, आखिरी वक्त आ गया है ना शादी का, तो ज़रा वो बच्ची के सर पे कुरान रख दे, खैर वो इमाम को तो जो सदमा पहुंचना था अंदर जाकर जुजदान में से कुरान निकालकर कोई और किताब डालकर लपेट कर दे दी, ये ले जाओ। कि जाकर खोलेंगे तो कुछ तो शऊर बेदार होगा कि बंद किताब से क्या बरकत लेनी है, इस किताब को खोलो। खैर, चला गया वो बच्चा। एक आध घंटा गुजरा तो बड़े इज्जत से, प्यार से, जी शुक्रिया बहुत, हमारा काम हो गया। कहा, क्या हुआ? कहा, बस इस जुजदान के नीचे से दुल्हन को गुजार दिया। कहा, खोला नहीं? कहा, नहीं खोला तो नहीं। इसका सदमा शायद उस नेक बंदे को उससे ज्यादा हुआ होगा। ये है हमारी आखिरी चीज़ है। कैसे मिले, कैसे बरकत है शादियों में? क्या शुरू से आखिर तक मेरी शादी, हमारे घरों की शादियां अल आखिर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुश रखने लिए होती हैं? सबको खुश भेजते हैं, अल्लाह रसूल और फरिश्तों को कहते हैं आप जरा कोने मेरे, बस निकाह हो गया, अब आप जाइए, हमें भी तो कुछ करना है ना। इसी तरह देखिए, दुनिया में आने और जाने वाली हर चीज़ खुशी और गम की मोहताज होती है, लेकिन अल्लाह सुबहान तआला हमेशा रहने वाले हैं और किसी के मोहताज नहीं है, इस बात का यकीन रखिए। ज़ाहिर है जो आखिर तक रहेगा तो कोई और नहीं है तो फिर वो अपनी टेक केयर तो खुद ही करेगा ना। और इसी तरह इसी के पास से हर चीज़ बनाई गई और इसी के पास मरने के बाद जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल आखिर के साथ ताल्लुक़ करते हुए आखिरत के लिए तैयार रहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन मौत का इंतज़ार करता है। मन अहब्ब लिक़ा अल्लाह अहब्ब अल्लाह लिक़ाहु, जो अल्लाह से मुलाकात से मोहब्बत करता है अल्लाह भी उससे मुलाकात से मोहब्बत करता है। और वो एक हदीस कभी ना भूलें कि ला तज़ूल इब्ने आदम मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअल अन्हु खमसा, जब तक उसे पांच सवाल ना पूछ लिए जाए। देखिए अल आखिर ने यौमुल आखिर पे आपसे हिसाब किताब भी लेना है। जिंदगी कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ बिताई, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, और जो इल्म मिल गया उस पर अमल कितना किया। तो आखिरत के दिन तो उठना ही पड़ेगा, तो फजर के लिए बिस्तर को छोड़िए अल आखिर के लिए, क्योंकि आखिर में सिर्फ उसी ने आपके मेरे काम आना है। और इसी तरह ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारा खात्मा बिल खैर हो, हमारी आखिरी घड़ियाँ बड़ी प्यारी हों। जैसे अल्लाह के नबी की आखिरी घड़ियों पे आपकी ज़ुबान पे क्या दुआ थी, अल्लाहुम्मा बिर रफ़ीक आला, ए अल्लाह मुझे रफ़ीक आला से मिला दे, ए अल्लाह मुझे उस प्यारी सी हस्ती से मिला दे। तो आखिर से ताल्लुक़ क्या है कि अपनी आखिरी घड़ियों को याद रखें। मेरी आखिरी सांसें कैसी होंगी, इस पे दो तीन सीरीज़ भी हैं हमारे पास। एक तो आखिरी सांसें ही हैं शायद, और ज़िंदगी की आखिरी तस्वीरें हैं, मौत के वक्त अक्सर लोगों के साथ क्या हुआ, सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और इसी तरह फिर एक बात ना भूले, सूरत फजर की आखिरी आयतें ना भूले, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इरजीला रब्बी की राधियतम मर्दिया। इसको हमेशा याद रखें, अपनी दुआ में ये दुआ शामिल कर ले चले आज से कि अल्लाह मेरी आखिरी घड़ियां बड़ी खूबसूरत हों। देखिए कोई भी चीज़ एंड तक अच्छी जाए ना फिर खुश है। शुरू में प्रोग्राम अच्छा हो, बाद में भगदड़ मचे, लोगों को भगदड़ याद रहेगी। एंड वेल इज़ गुड वेल। तो क्या करें, अल्लाह मौत के वक्त मेरी ज़ुबान पे कलमा हो और मुझे नफ्से मुतमईना करार दिया जाए, तेरे फरिश्ते मुझे ये पुकार सुनाए, ऐसे प्यार से जान निकालना कि पता ही ना चले, और अपनी मौत का इंतज़ार कीजिए। जी बुरी बात नहीं है, देखिए आपके इंतज़ार से आ नहीं जाएगी, जो आनी है वो आनी है। तो आखिरत से ताल्लुक़ जोड़िए, इस दुनिया में जीने वाला आखिरत ओरिएंटेड होता है, फिर आखिरत उसके दिल दिमाग और इरादों पे छा जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा ताल्लुक़ इस नाम के साथ इतना प्यारा जुड़ जाए कि हमें हर वक्त अपना आखिरी लम्हा याद रहे। तो ये था अल्लाह ताला का प्यारा सा नाम अल आखिर। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।